अध्याय 9 ग्राम शासन व्यवस्था। भूमिका। भारत सदा से ग्रामों का केंद्र रहा है। यहाँ की सभ्यता आदि कला आदिकालीन ग्रामों से विकसित हुई। यदि यह कहा जाए कि भारतीय संस्कृति ग्रामीण है तो भी अतिशयोक्ति ना होगी। चार गांव ही यहाँ की शासन व्यवस्था के केंद्र रहे हैं। वैदिक कालीन साहित्य के उल्लेखों द्वारा यह सिद्ध हो जाता है कि उस समय गांवों को अत्यधिक महत्वपूर्ण दृष्टि से देखा जाता था। उस समय यातायात के साधन अत्यधिक विकसित नहीं हो पाए थे, फलतः गांवों का ही अधिक महत्व था। इस समय गांवों का क्षेत्र भी अत्यधिक सीमा में होता था। उस समय से आगे चलकर राज्य के क्षेत्र में परिवर्तन होते रहे। इस समय गांव में रहने वाले मुखिया लोग अपने यहाँ लोगों को बुलाकर मुकदमों का फैसला किया करते थे और इस प्रकार से गांव एक प्रकार से शासन की एक आधार स्वरूप इकाई समझे जाते थे। यहां पर गांव की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डाला जाएगा। ग्रामीण अथवा मुखिया। वेदों में गांव के प्रधान को ग्रामीण कहकर उसका उल्लेख किया गया है। साधारण रूप से वह गांव का अधिकारी या प्रधान होता था और इमर या वैश्य आसीन होते थे। यद्यपि उत्तराधिकारी मुखिया का पुत्र आदि ही होता था, पर यदि वह योग्य सिद्ध ना हुआ तो उसके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को भी बिठलाया जा सकता है। मुखिया को गांव की व्यवस्था करने का कार्य सौंपा जाता था। उसके कंधों पर गांव की रक्षा का भार था। चूँकि उस समय आवागमन के साधन अत्यधिक विकसित नहीं हो पाए थे, अतः राजा के द्वारा प्रजा को बहुत कम सहायता मिल पाती थी और मुखिया ही ग्राम रक्षा का पूरा मालिक था। वह गांव की सेना का भी प्रधान होता था। वेदों में ग्रामीण की गणना रत्नों में की जाती थी। जातकों में तो इसे राजा कहकर पुकारा गया है। शुक्र ने इसे ग्रामवासियों के माता पिता तुल्य माना है। मुखिया ही गांव में कर वसूल करता था और इस प्रकार वह गांव का सर्वा होता था। गांव में एक मुनीम या लेखपाल भी होता था, जिसका प्रधान कार्य गांव और जिले के अधिकारियों के मध्य होने वाले पत्र व्यवहार की व्यवस्था करना तथा अन्य उल्लेख करने योग्य वस्तुओं का लेखा अपने पास रखना होता था। इसके अतिरिक्त गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति भी ग्रामीण कार्यों को में अपना महत्व रखते थे और उनके सुझावों का सम्मान किया जाता था। ग्राम सभा। ग्रामीण मामले एवं आपसी विवादों का निपटारा करने हेतु उस समय एक ग्राम सभा नामक संस्था भी होती थी। इस संस्था के अंदर सभी लगभग गांव के ही सदस्य हुआ करते थे। इस तथ्य को प्रोफेसर अल्तेकर ने भी स्वीकार किया है। ग्राम सभा में गांव के सब गृहस्थ होते थे। इन सदस्यों का महाजन कहा जाता था, जिनकी संख्या गांव की जनसंख्या के अनुसार 200 से लेकर 1000 तक हो सकती थी। ग्रामीण शासन पद्धति के विषय में जातकों का मत। जातकों के अंदर एक अधिकारी ग्राम भोजक का उल्लेख प्राप्त होता है। इसी के साथ ही अमात्य का भी नाम आता है, जो इस भांति यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम भोजक और आमत इन दोनों के पद अत्यंत महत्वपूर्ण रहे होंगे। ग्राम भोजक के ऊपर राजा का पूर्ण नियंत्रण रहता था। राजा उनके कार्य से असंतुष्ट होने पर उनको पदच्युत भी कर सकता था। इन ग्राम भोजकों को निम्नलिखित कार्य करने पड़ते थे। नंबर 1, गांव से संबंधित सभी कार्यों पर विशेषकर सुरापान पर नियंत्रण रखना उसका एक कार्य विशेष होता था। नंबर 2, उसका कार्य ग्रामीण मामलों का फैसला करना भी था। नंबर 3, उसके द्वारा अकाल में प्रजा की सहायता प्राप्त होती थी। नंबर 4, पशु हिंसा पर नियंत्रण लगाना उसका एक मुख्य कार्य होता था। ग्राम शासन के विषय में मनु के विचार। मनु ने शासन की सुव्यवस्था के हेतु राष्ट्र को छोटे छोटे भागों में बांटने की व्यवस्था की है। उनके धर्म शास्त्र में एक राज्य के अंतर्गत 10-20-100 सहस्त्र पृथक पृथक आत्मनिर्भर ग्रामों तथा उनकी पृथक पृथक व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। यह गांव शासन की तत्कालीन लघुत्तम इकाई थी। गांव के अंतर्गत राजा द्वारा निर्दिष्ट एक शासनाधिकारी होता था और वह राजा को गांव के मामलों से अवगत कराया करता था। गांव के अधिकारी की मनुस्मृति में ग्रामीण कहकर पुकारा गया है। गांव में फैसले वाली सारी अव्यवस्था का उत्तरदायित्व उसी के ऊपर हुआ करता था। इसके अतिरिक्त राज्य स्वयं गांव की रक्षा का समुचित प्रबंध करता था। ग्राम शासन। कौटिल्य के अनुसार जनपद की एक इकाई के रूप में कौटिल्य ने गांव का उल्लेख किया है। उसके अनुसार गांव आपस में इतनी दूरी लेकर बसे होने चाहिए कि समय पड़ने पर वे एक दूसरे की मदद कर सके। उसके अनुसार गांव में बसने वाले परिवारों की संख्या 100 से 400 तक होनी चाहिए। प्राकृतिक सीमाओं द्वारा उनका विभाजन होना चाहिए। उसके विचार से चूंकि गांव कृषि प्रधान होते हैं, अतः उन गांव में किसानों या शूद्रों की संख्या अधिक होनी चाहिए। ग्रामीक कौटिल्य ने ग्रामीक अथवा ग्रामीणी नामक शासनाधिकारी का उल्लेख किया है, जो कि गांव का सर्वे सर्वा होता था। यही गांव के सभी मामलों की देखभाल करता था। राजा स्वयं इस अधिकारी की नियुक्ति करता था। गांव के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले निर्वाद विवादों का निर्णय ग्रामीक तथा अन्य गांव के बड़े बूढ़े आपस में मिलकर करते थे। ग्रामीक शासन में मनमानी नहीं करता था। उसके द्वारा असहायों की संपत्ति की रक्षा की जाती थी। उसके द्वारा अपने कर्तव्य पद से च्युत हो जाने पर कौटिल्य ने उसके लिए 24 पड़ तक जुर्माने की व्यवस्था की है। इस प्रकार ग्रामीक का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण होता था, फिर भी वह मनमानी नहीं करता था। पंचग्रामी तथा 10 ग्रामी अधिकारी गण। कौटिल्य ने ग्रामीक के अतिरिक्त पंचग्रामी एवं 10 ग्रामी नामक पदाधिकारियों का उल्लेख किया है। इन अधिकारियों का कार्यकाई कई एक गांव के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों को शांत करना होता था। राजा स्वयं इनकी नियुक्ति करता था। ऐसा जान पड़ता है कि 5 गांवों के ऊपर पंचग्रामी एवं 10 गांवों के ऊपर 10 ग्रामी। इस प्रकार से कौटिल्य ने इन अधिकारियों की व्यवस्था की थी। कौटिल्य के अनुसार गांव के शासन को सुचारू रूप में चलाने हेतु 200 गांवों के मध्य एक केंद्र, जिनको उसके सर्वार्थिक कहकर अभिहित किया गया है, होना चाहिए। द्रोणमुख और स्थानिक आदि अधिकारी भी कौटिल्य के वर्णन के अंतर्गत आते हैं। वे दोनों अधिकारी क्रमशः 400 और 800 गांव की व्यवस्था करने वाले होते थे। इस प्रकार एक छोटे से गांव से लेकर अधिकतम संख्या में शासन से सुचारू रूपेण शासन की व्यवस्था आचार्य कौटिल्य के द्वारा की गई है। ग्रामीण शासन संबंधित कार्यों के अतिरिक्त कुछ अन्य कार्य भी इन ग्रामीण अधिकारियों के द्वारा संपादित किए जाते थे। इसके अंतर्गत गांव वालों को एक सार्वजनिक हित के हेतु किए जाने वाले कार्यों का उल्लेख किया जा सकता है। गांव की शासनात्मक संस्थाएं ग्रामीण जनता के मनोरंजन तक का ध्यान रखती थी। इन ग्राम सभाओं के अंदर समय समय पर इस प्रकार के नियम बनाए जाते थे, जो कि इन न्यायालयों के अंदर मान्य समझे जाते थे। गांव की शासन व्यवस्था के हेतु सरकार की ओर से एक गोप नामक अधिकारी की नियुक्ति किया जाता था। नगर के अधिकारी नागरिक के समान इनकी भी स्थिति होती थी। इसके द्वारा गांव की जनगणना तथा उनकी सीमाओं को निश्चित करने के लिए कार्य किए जाते थे। निष्कर्ष इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था गांव में प्रचलित थी। गुप्तकालीन ग्राम्य शासन व्यवस्था। गुप्तकालीन शासन में विषय कोष्टक में जिले को अनेक गांव में विभक्त किया गया था। गांव का प्रधान अधिकारी महत्तर हुआ करता था। गांव के मामलों का निर्णय करने हेतु एक पंच मंडली होती थी। गुप्तकालीन अभिलेख निम्न ग्रामीण अधिकारियों का उल्लेख करते हैं। नंबर 1 महत्तर, नंबर 2 अष्ट कुलाधिकारी, नंबर 3 ग्रामीक, नंबर 4 कुटुम्बिन। इन अधिकारियों के अतिरिक्त जो कि गांव में अनेक प्रकार के शासन तथा सार्वजनिक हित के कार्य करते थे, राजा के द्वारा नियुक्त एक अन्य अधिकारी भी होता था। भूमि आदि की व्यवस्था के लिए पुष्पपाल नामक एक अन्य अधिकारी भी होता था। मध्यकाल का भारत। दक्षिण भारत में प्राप्त अभिलेख इस विषय में अत्यधिक सहायक सिद्ध हुए हैं। इन लेखों के अनुसार उस समय गांवों का शासन ग्राम सभाएं करती थी। ग्राम सभा के अंदर वयस्क या सदगृहस्थ उसके सदस्य के रूप में होते थे। उन सदस्यों की संख्या 200 से 1002 तक हो सकती थी। किसी विशेष सार्वजनिक स्थान पर इनकी बैठक हुआ करती थी। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ समितियां होती थी। नंबर 1 दान व्यवस्था की समिति, नंबर 2 जलाशय की व्यवस्था करने वाली समिति, नंबर 3 उद्यान कोष एवं न्याय व्यवस्था करने वाली समितियां, नंबर 4 इसमें धार्मिक स्थलों एवं साधुओं आदि की व्यवस्था करने वाली समितियों को लिया जा सकता है। इन ग्राम समितियों को विभिन्न स्थानों पर पंचमंडली और ग्राम जनपद आदि नामों से अभिहित किया गया है। इसके अतिरिक्त पंचकुल और महत्ताधिकारियों आदि समितियों का भी उल्लेख प्राप्त होता है। ग्राम सभा के सदस्य सभी वयस्क पुरुष होते थे। इनकी आयु 35 से 70 वर्ष तक की होती थी तथा उनको उनके पद से पृथक भी किया जा सकता था। सभी सच्चरित व्यक्ति इस सदस्यता के लिए अवसर पाते थे, पर दुष्चरित व्यक्तियों का यह अधिकार सदा सर्वदा के लिए समाप्त कर दिया जाता था। ग्राम सभा के मुख्य कार्य। ग्राम सभाओं द्वारा संपादित होने वाले मुख्य कार्यों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों का उल्लेख किया जा सकता है। नंबर एक, भूमि कर की व्यवस्था तथा निजी संपत्ति की रक्षा करना। नंबर दो, ग्राम वासियों के आपसी झगड़ों का फैसला करना। नंबर तीन, देवालय मंडी और बाजारों का प्रबंध करना। नंबर चार, अकाल के समय जनता की सहायता करना। नंबर पाँच, गांव की सभी संपत्तियों की रक्षा करते हुए सार्वजनिक हित की व्यवस्था करना। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि ग्राम सभा पर पूरे गांव की जिम्मेदारी थी। उसको काफी मात्रा में अधिकार भी प्राप्त थे। उसके कार्य एवं अधिकारों से अच्छा प्रकाश पड़ता है। वास्तव में उसका कार्य अपने क्षेत्र में सराहनीय था। मौर्य ग्राम शासन व्यवस्था। ग्राम का शासन। प्रत्येक जनपद को कई एक गांव के अंतर्गत विभक्त किया गया था। एक ग्रामिक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है, जो कि गांव के शासन का कार्य करता था। यह पूर्ण रूपेण नहीं कहा जा सकता कि इस अधिकारी की नियुक्ति राज्य की ओर से होती थी या ग्राम के लोग आपस में मिलकर उसका निर्वाचन कर लेते थे। ग्रामिक का पद अत्यंत महत्वपूर्ण तथा उत्तरदायित्वपूर्ण समझा जाता था। उसकी सहायता पहुंचाने के लिए गांव के वृद्धों की एक सभा होती थी। ग्रामिक गांव के मामले के विषय में गलत निर्णय देने पर दंडित किया जा सकता था। उसको भी छोटे छोटे जुर्माने का अधिकार था। ग्राम सभा गांव के मामलों का निर्णय करती थी। गाँव सभा के पास गाँव की आबादी, लोगों का व्यवसाय तथा उससे संबंधित अन्य बातों का लिखित ब्यौरा रहता था। गांव में एक गोप नामक सरकारी अधिकारी भी होता था। गांव की जनगणना का कार्य तथा उसकी सीमा का निर्धारण गोप करता था। इन गांवों को 5-5 की इकाइयों में संगठित करके पंचग्रामी नामक अधिकारी को उसका शासन सौंप दिया जाता था। खारवटीक और द्रोणमुख भी इसी प्रकार के 200 और 400 गांव के केंद्र के क्रम से शासनाधिकारी कहे गए हैं। व्यवसायी वर्ग अपना एक विशिष्ट संघ रखते थे। इन संगठन के धर्म एवं चरित्र को राज्य की मान्यता प्राप्त थी। इन संस्थाओं के नियम स्वसीमित एवं स्वसंचालित होते थे। कौटिल्य के अनुसार कुछ इस प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति राज्य के द्वारा की जानी चाहिए, जो कि इन शिल्पियों पर नियंत्रण स्थापित कर सके। इन अधिकारियों को उन व्यापारियों को विश्वास पात्र और स्वयं में भी निष्पक्ष होना चाहिए। चोल ग्राम शासन व्यवस्था। उत्तर भारतीय मौर्य नगर शासन की भांति ही दक्षिण भारतीय प्रशासनिक संस्थाओं में चोल ग्राम शासन की भी अपनी विशेषता है। इतना व्यवस्थित ग्राम शासन अन्य किसी राज्य में नहीं दिखता। ग्राम का महत्व सांस्कृतिक तथा आर्थिक दृष्टि से भी किसी भी प्रकार नगरों से कम नहीं थी। चोल राज्य में ग्राम शासन स्वायत्त शासी इकाइयों पर आधारित थी तथा इनका निर्णय केंद्र को भी मान्य होता था। एक केंद्रीय विषयों पर भी निर्णय लेती थी, जैसे भू स्वामित्व, राजस्व आदि। भले ही इनमें कभी कभी राज्य कर्मचारी प्रतिनिधि रूप में उपस्थित रहते थे, परंतु इनकी कार्यवाही स्वतंत्रता होती थी। चोल ग्राम शासन की विशेषताएं निम्नलिखित है। विभिन्न समितियों का गठन। चोल ग्राम शासन की अनेक सभाएं थी। इनके अतिरिक्त विभिन्न समितियां भी थी, जो धार्मिक, सांस्कृतिक आदि संगठनों से संबंधित थी, जैसे मंदिर समिति, व्यापार समिति आदि। इन समितियों का उद्देश्य भी उस विशिष्ट संस्था का विकास हो। इनका संगठन भी धर्म और परंपराओं द्वारा मान्यता प्राप्त एवं नियंत्रित होता था। ये समाज और राज्य के प्रति उत्तरदायित्व होते थे, किंतु इनका कार्य क्षेत्र सीमित था। ये सदस्य भी ग्राम सभाओं के सदस्य होते थे। वहाँ इनका दायित्व पूर्ण रूप से राजनीतिक होता था। क्योंकि ये दोनों ही संगठनों के सदस्य होते थे, अतः इसमें विरोध नहीं होता था। समग्र ग्राम शासन के संचालन के लिए जिन सभाओं को संगठित किया गया था, वे मूलतः दो थी, उर एवं सभा। इनके अतिरिक्त अन्य सभाएं थी नगरम, नाडू आदि। उर यह ग्रामीण सभा का सामान्य स्वरूप था। उर का अर्थ होता है ग्राम या नगर, अतः ग्राम या नगर की सभा को उर कहा गया है। इसकी सदस्यता प्रत्येक ग्रामवासी के पास होती थी। यद्यपि प्रामाणिक रूप से इसकी संरचना की जानकारी नहीं मिलती, पर यहाँ प्रयुक्त उरोम शब्द से ज्ञात होता है कि उर में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो वयस्क हो जाता था वह इसका सदस्य बन जाता था, किंतु वयोवृद्ध व्यक्ति का इसमें भी वर्चस्व होता था। इसकी कार्यप्रणाली में एक कार्यकारिणी समिति का भी ज्ञान होता है, जिसे अलुगणम कहते थे। विशिष्ट समस्याओं का समाधान यही होता था। इसमें एक समिति न्याय के लिए भी गठित की जाती थी। सभा ग्रामदान का विधान पूर्व मध्यकालीन भारत में था। दक्षिण भारत के अनेक अभिलेखों में इस दान का उल्लेख है। अग्रहारा दान नाम से मिलता है। राजा लोग ब्राह्मणों को शिक्षा की परंपरा बनाए रखने के लिए ग्राम दान करते थे, जहां ब्राह्मण रहते तथा उसकी आय से छात्रों एवं अपने परिवारों का खर्च वहन करते थे। ऐसे ग्रामों के दान को अग्रहारा ग्राम दान के नाम से जाना जाता था। चोलों में इस प्रकार के दान की प्रथा ब्राह्मण परिवारों के बसाने के लिए थी। इन ब्राह्मण मंडल की सभा को ही सभा नाम से भी जाना जाता था। यदि नए ब्राह्मण की कुछ काल के लिए वहां आकर बस जाते थे तो भी इस सभा के सदस्य हो जाते थे। पर किसी ग्राम में जहां विद्वान ब्राह्मण बसाए भी जाते थे, वहां वे उर भी सभा के साथ साथ होते थे। वार्यम शब्द का प्रयोग सभा के ही संदर्भ में प्राय किया गया है। इसका अर्थ बहुत कुछ अस्पष्ट है, किंतु अभिलेखों में अनियमितता के निवारणाय वास्तिर को नियुक्ति का ज्ञान मिलता है। लगता है सभा के सदस्यों में से यह आवश्यकता अनुसार चयनित विशिष्ट समिति रही होगी। स्वभावतः यह सभा की कार्यकारिणी समिति थी। इसी के सदस्यों को परिवार कहते होंगे। इसकी सदस्यता संख्या निश्चित नहीं थी। विभिन्न सभाओं में वार्यम की संख्या अलग अलग ज्ञात होती है। चयन प्रणाली में भी अनेक रूपता थी। उत्तर में उर्लेख से एक ऐसे संगठन का ज्ञान होता है। संपूर्ण ग्राम सभा 30 कुटुंबों तथा 12 खंडों में विभक्त थी। इस सभा बस्ती के वयस्क सभा के सदस्य थे, जिन्होंने वार्यम के सदस्यों का चुनाव किया था। इन चयनित सदस्यों को 6 उप समितियों में विभक्त किया गया और अलग अलग काम सौंपे गए। पहली उप समिति व्यवस्था करती थी, दूसरी जलाशय, तीसरी विवादों का निर्णय करती थी, चौथी स्वर्ण व्यवस्था करती थी, पांचवी पंचनगर कहलाती थी, जिसके किसी निर्दिष्ट कार्य का ज्ञान नहीं मिलता, छठी आय व्यय का देख रेख करती थी। अन्य कार्यों के लिए भी उप समितियाँ बनाई गई थी। वार्यम में 3 प्रकार के सदस्य होते थे, शासन द्वारा नियुक्त, वंशानुगत और सभा द्वारा निर्वाचित। निर्वाचित सदस्यों की योग्यताएं इस प्रकार थी, नंबर 1 ग्रामवासी, नंबर 2 35 से 70 वर्ष के बीच का आयु, नंबर 3 वेदज्ञ, विद्वान एवं आर्थिक दृष्टि से संपन्न ब्राह्मण हो, नंबर 4 निरंतर 2 क्रमों में सदस्य ना रहा हो, नंबर 5 ब्राह्मण की संपत्ति का अपहर्ता हो, कर दे दिया हो, अपराधी ना हो या अपराधी का संबंधी ना हो, ग्राम विरोधी कार्य ना किया हो। इनके निर्वाचन की विधि थी कि सब सदस्यों का नाम चिट पर लिखकर एक घड़े में डालते थे, जिसे हिलाकर मिला देते थे और फिर किसी बालक द्वारा निकलवाते थे। नगरम, प्रमुख नगर सभा को ही नगरम कहते थे। पहले यह व्यापारिक सभा थी, बाद में वही राजनीतिक और व्यापारिक दोनों विषयों पर विचार करने लगी। नाडू, यह संपूर्ण नाडू की सभा होती थी। प्राय इन सभी सभाओं की बैठक नगाड़ा बजाकर बुलाई जाती थी। कभी कभी घोषणा भी करा दी जाती थी कि इसके अनुसार सभी सदस्य अपने सभा स्थल पर एकत्र होते थे। वहां महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत किया जाता था, फिर उस पर सर्वसम्मति से निर्णय लेते थे। यहां मतदान की कोई व्यवस्था न थी। वे भूमि एवं क्रय विक्रय व्यवस्था, कर लगाने और वसूलने का कार्य करते थे। इस समय एक मध्यस्थ राजकीय कर्मचारी भी इनके साथ होता था, वही इनके आय व्यय के ब्यौरे का निरीक्षण भी करता था।